रखी है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में आए अपने, दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते थी, देखा तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत।
ओम शांति। आप सभी आदरणीय सिलू दीदी जी को तो बहुत अच्छे से पहचानते ही होंगे। दीदी जी वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका हैं। माउंट आबू में जितने भी राजयोग शिविर होते हैं उनकी आप निदेशिका हैं। एजुकेशन विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, जो राजयोग का एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। 2023 में आपको वुमेन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। आप बाबा की शिव शक्ति सेना की अग्रण्य सेनानी या कमांडर कहें कि आप बाबा की सेना की कमांडर हैं। बाकी आज से 78 वर्ष पूर्व मुंबई में आप जो एक रत्न है बाबा के, आपका जन्म हुआ। 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में आपको ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आना हुआ और पढ़ाई के साथ आपने राजयोग का अभ्यास किया। 1969 से लगभग 57 वर्ष से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई में अपनी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात बाबा ने आपसे अफ्रीका मॉरिशस में भी सेवाएं ली। 1976 से बाबा का जो वरदान था कि आप हर की पौड़ी हो, तो उस वरदान को साकार करते हुए आप माउंट आबू अर्थात आबू राज में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। राजयोग शिविरों के द्वारा लाखों लोगों को बाबा का संदेश दिया है। हर वर्ग की आत्माओं को आपने अपने सुमधुर वाणी के द्वारा बाबा का बनाया है। कॉर्पोरेट्स में भी आपने मैनेजमेंट कोर्सेज के द्वारा बाबा की सेवाएं की हैं। आपने पांचों महाद्वीपों में 100 से अधिक देशों में ईश्वरीय सेवा अर्थ भ्रमण किया है। आपको इंग्लिश, हिंदी और सिंधी तीनों ही बहुत ही फ्लुएंटली आती हैं और आप इंटरप्रेटर भी हैं। राजयोग प्रवचन माला, राजयोग कमेंट्री, जो बेसिक कमेंट्री है जिसके द्वारा ही हमने योग लगाना सीखा और आज भी उस कमेंट्री का कोई तोड़ नहीं है। तो राजयोग प्रवचन माला, राजयोग कमेंट्री आध्यात्मिक विषयों पर सबसे पहले आपकी ऑडियो वीडियो क्लासेस बनी। आप रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के द्वारा भी सेवाएं करते रहे और जब से टीवी चैनलों में आध्यात्मिक प्रोग्राम का आना शुरू हुआ तो बाबा की संस्था को रिप्रेजेंट करने वाले भी आप ही थे। जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार चैनल पर आपके कार्यक्रम प्रसारित हुए और अभी पीस ऑफ माइंड चैनल पर नियमित आपके प्रोग्राम्स आते हैं। सम्मेलन, महासम्मेलनों के कुशल आप प्रवक्ता रही हैं। आप बहुत ही शीतल स्वभावी हैं, मीठी पालना देने वाली, सरल, पवित्र, निश्चल, निर्मल, अथक सेवाधारी, प्रेरणा पुंज हैं। एक रस स्थिति जो बाबा कहता है वो आपको देखकर सहजी समझ में आता है। यूं कहें कि ज्ञान की गंगा है आप, गुणों की सरिता है आप दीदी, जहां बैठे वहां हो जाए उजाला, बाबा की ऐसी स्वर्ण हीरा है आप। और आपके बोल के लिए जिसके लिए बाबा ने कहा सरस्वती बिराजते हैं, तो जरूर कहना चाहूंगी मीठे बोल बोलिए क्योंकि शब्दों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि शब्दों में जान होती है, इसी से आरती, अरदास और पूजा होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसान की पहचान होती है। तो आप अपने सुमधुर वाणी के द्वारा सारे विश्व में पहचानी जाते हैं। ऐसे आदरणीय दीदी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि इस भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करें। शरीर का नाम सोनू बहन है, पास में राजस्थान में रानी करके जगह वहां पे बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया हुआ है। 30 वर्षों से अधिक हुआ सेंटर पे समर्पित रूप से बाबा की सेवाओं में उपस्थित हैं।
और आपके इस कार्यक्रम का पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे सोनू बहन। चलो ओम शांति। आप सभी जो हिमाचल प्रदेश से आए हैं हाथ उठाएंगे। कौन है टीचर्स हिमाचल प्रदेश मंडी मंडी से आए हैं, हाथ उठाए मंडी की टीचर बहने। अच्छा, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, गुजरात, क्या नाम, बासन, बासन वासन, कहाँ पर है ये, बड़ौदा। अच्छा, किसका कनेक्शन है, चनिया सुख शांति। अच्छा वासन, अच्छा अच्छा वासन के भाई बहने हाथ उठाए। अच्छा अच्छा बाकी बड़ा ग्रुप तो मंडी का है। तो मधुबन, तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में आप सभी पधारे हो। तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी और हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि में बट्टी के निमित्त आपका आना ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। कई भाई बहनों की तैयारी हो चुकी होगी, नाम भी उनका लिस्ट में आ गया होगा, लेकिन ऐन मौके पर वो नहीं आ सके, ऐसे भी हुआ होगा। और ऐसे भी भाई बहने होंगे जिनका नाम नहीं था, लेकिन ऐन मौके पर दीदी ने उनको कहा आप चलेंगे, तो काम तैयार हो गए। तो ऐसे भी भाई बहने होंगे, तो कुछ तो रह गए और जिनका नहीं था वो आ गए। तो हम यही कहते हैं कि जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली। अपने लिए ताली बजाएं। कई ऐसे भी भाई बहने होंगे जो मधुबन पांडव भवन में पहली बार रात को रहेंगे, क्योंकि ज्ञान सरोवर शांति वन बनने के बाद तो जो भी पार्टियां आती है वो नीचे ही रहती है और यहाँ चार धाम की यात्रा करके वापस जाती है, लेकिन यहाँ रहते नहीं है। तो आप सब यहाँ अगले चार पांच दिन रहकर यहाँ के वातावरण का पूरा लाभ लेंगे, तपस्या करेंगे। तो जो भाई बहने पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, पहले कभी पांडव भवन में नहीं रहे, ओके। और जो पहले रह चुके हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है, वो पुराने होंगे ना, क्योंकि शांतिवन बनने के बाद तो मुश्किल से यहाँ रहते हैं। जो भाई बहने 25 साल से ऊपर है ज्ञान में वो हाथ उठाएं। 25 साल से ऊपर। अच्छा, जो 20 और 25 के बीच में है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो 15 और 20 के बीच में है वो हाथ उठाएं। जो 10 और 15 के बीच वाले वो हाथ उठाएं। जो 5 और 10 के बीच वाले वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो 5 से भी कम है वो हाथ उठाए। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। बाबा के घर में आना यही अति भाग्य की निशानी है, और यहाँ तपस्या करना, रहकर चार धाम की यात्रा करना, बाबा को अपना सच्चा साथी बनाना, एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लक्ष्य से सारी दुनिया से बेखबर होकर केवल बाबा की दुनिया में रहना इनसे और बड़ा भाग्य और कोई नहीं होगा। और फिर यहाँ तपस्या करना ये तो अहो सौभाग्य पद्मा पदम भाग्य। तो ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को हमारी तरफ से बहुत 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 स्वागत स्वागत स्वागत। ओम जैसे ही आप यहाँ पधारे आपको अकोमोडेशन मिली होगी तो उसी वक्त आपको ये विजयमाला दी गई। हाँ, ये विजयमाला है आपके लिए और एक ठप्पा लगा बैज मिला ना, तो डबल लाइट योग साधना तपस्या वट्ठी ऐसे है ना, क्या है आप पढ़ा आपने जी, तो डबल लाइट तपस्या वट्ठी ऐसे तब क्या तो क्या है इस वट्ठी का लक्ष्य और क्या है इसका उद्देश्य। लक्ष्य और उद्देश्य में भी अंतर है। कई लोग पूछते हैं ना जब या आते हैं या हमारे एग्जीबिशंस में मेलों में सेंटरों पर जाते हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। तो हम मोटे रूप में उनको क्या कहते हैं, बातें तो बहुत सुना सकते हैं लेकिन एक वाक्य में उनको क्या उद्देश्य बताते हैं कि यहाँ का उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। एक वाक्य में ये बताते हैं क्योंकि बोल तो बहुत सकते हैं लेकिन शॉर्ट में मनुष्य से देवता बनना ये इस संस्था का उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो बहुत ऊंची चीज होती है लेकिन लक्ष्य अनेक होते हैं। जैसे आप मंडी से यहाँ आए तो आपने कितने रास्ते पार किए होंगे, हो सकता है एक ही ट्रेन थी या ट्रेन भी बदली करनी पड़ी। एक ही ट्रेन थी मंडी से यहाँ, अच्छा जी अच्छा, पर एक ही ट्रेन थी माना ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ी। चलो तो भले एक ही ट्रेन थी लेकिन काफी दूर है, हमें गई हो मंडी, मंडी में कौन शीला बहन सुशीला सुशीला रहती है। हाँ तो मंडी के बाद फिर ऊपर बहुत गई ना, ये बहुत दूर तक गए हम, वो क्या वो और जहाँ गर्म पानी के वो हिमाचल तो बहुत ऊंचा है। हाँ मणिकरण भी गए, बहुत आगे आगे गए, कुल्लू मनाली सब जगह गए, सारा चक्कर लगाया है। तो बहुत अच्छा, हिमाचल में तो मौसम भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा है ना, पर आबू का मौसम तो और अच्छा होगा। हाँ मैंने देखा है हिमाचल के भाई बहने कभी भी गर्मी में नीचे नहीं आते हैं, हिमाचल में हमेशा वो ऊपर ही रहते हैं क्योंकि वहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है। गर्मी में यहाँ आना तो वो पसंद ही नहीं करते, सर्दी के दिनों में ही आते हैं और सर्दी के दिनों में ही शिविर या भट्टी करने आते हैं तो यहाँ का मौसम अच्छा हो जाता है। तो आप सभी आए हो बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स आते हैं ना, मील पत्थर आते हैं। तो अगर 200 किलोमीटर का फासला है वहाँ तक पहुंचने में तो बीच बीच में पत्थर आते हैं कि अभी 50 हो गया तो 150 और है, फिर 100 और है, फिर 50 और है। तो जो बीच बीच में माइलस्टोन्स आते हैं हाँ, तो उनको कहेंगे ये लक्ष्य है, कि वहां तक पहुंचे, फिर वहां से वहां तक पहुंचे, वहां से वहां तक पहुंचे, फिर लास्ट में जाके हम मंजिल तक पहुंचते हैं, वो उद्देश्य हो जाता है। तो यहाँ भी मनुष्य से देवता कहना तो बहुत सहज है, लेकिन कितने सारे मील पत्थर क्रॉस करने पड़ते हैं तब जाके देवता बनते हैं। पहले हम क्या थे? बाबा का ज्ञान प्राप्त होने से पहले हम क्या थे? बाबा तो कहते सब शूद्र थे। क्या थे? सब शूद्र थे। शूद्र को दूसरे शब्दों में क्या कहते? क्षुद्र, माना गिरा हुआ। तो विकारी थे, पतित थे, माया से ग्रसित थे, और ये तो पता ही नहीं था कि माया ने हमें दुखी अशांत कर दिया है, पतित बना दिया है, माया के ही मुरीद थे। लेकिन जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला तो सबसे पहला ज्ञान कदम कौन सा मिला? तुम आत्मा हो। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। फिर परमात्मा का ज्ञान मिला तो और परिवर्तन आना शुरू हुआ। फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, कैसे हमने इस सृष्टि चक्र में पाठ बजाया है और अभी हम कहाँ हैं, वो ज्ञान मिलते ही जैसे हमको तीसरा नेत्र मिल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया और सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम समझ गए, तीनों लोकों का ज्ञान मिला, तीनों लोकों में सैर करने का तरीका मिला, और फिर माया से लड़ने का भी ज्ञान मिला, बहुत कुछ ज्ञान मिला, बहुत बड़ी समझ मिली, जिस समझ के आधार से हमने अपना जीवन परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो वो पहली पौड़ी, पहला कदम, पहला लक्ष्य, जिसमें बाबा ने हमें कितनी धारणा की बातें बताई। हर रोज मुरली में धारणा की कितनी बातें आती है, बच्चे ये करो, बच्चे ये नहीं करो, बच्चे ये पाप है, ये पुण्य है, कर्मों की फिलॉसफी बाबा ने हमें समझाई और हमने इस मार्ग को अपना लिया। और हम जैसे मार्ग को अपना करके चलने लगे तो बाबा ने हमको नियम सारे बताए। ब्राह्मण किसको कहा जाता है ना, ब्राह्मण की क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या उसकी धारणाएं होती है, वो बाबा ने हमें बताई। ब्राह्मण किसको कहेंगे? ब्राह्मण शूद्र से ब्राह्मण बने हम, लेकिन ब्राह्मण किसको कहा जाता है? तो शास्त्रों में भी कई बातें हैं। तो ब्राह्मण उसको कहेंगे जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो। लौकिक में भी मानते हैं ब्राह्मण, उसके कच्छ में कुरम किताब जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई शास्त्र उसके बगल में होता ही है। तो इसीलिए जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो। अब ब्रह्म ज्ञान बाबा हमको कहते हैं जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दिया, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में हो, तब हम ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान। फिर दूसरा ब्रह्म से संबंधित ब्रह्म भोज। बाबा ने हमें शुद्ध आहार खाने के लिए लक्ष्य दिया, जो हम भोजन देवताओं को नहीं खिला सकते हम भी नहीं खा सकते, क्योंकि देवता बन रहे हैं। तो इसीलिए देवता बनने वाले वो शुद्ध आहार खाएंगे। केवल शुद्ध आहार ही नहीं, परंतु शिव बाबा की याद में पकाया हुआ, उनको भोग लगाया हुआ वो भोजन स्वीकार करेंगे, उसको बाबा ब्रह्मा भोजन कहते हैं। फिर और ब्रह्म से तीसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला उठना। पहले तो पता नहीं कितने बजे उठते होंगे, योगी तो थे नहीं, तो 6-7 बजे ही उठते होंगे, या कई तो और भी लेट उससे उठते हैं। तो हम तो यही कहते हैं जो 3 बजे उठे 4 बजे उठे वो है वो 3 बजे उठे तो महायोगी, चलो 4 बजे उठे तो योगी, फिर 5 बजे उठे तो भक्त, भक्त भी 5 बजे उठ जाते हैं, और जो 6 बजे उठे वो भोगी, हाँ क्योंकि भोगी जो होते ना वो भी 6 बजे तो उठ ही जाते हैं, फिर 7 बजे उठे तो रोगी, हाँ रोगी भी 7 बजे तक तो उठ ही जाते हैं, और 7 के बाद उठे तो महाभोगी महारोगी, हाँ सब महा जो नेगेटिव शब्द है वो जुड़ जाते हैं, और कोई तो 2 बजे भी उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं तो 2 बजे भी उठते हैं। मैं तो देखती हूँ यहाँ कितनी माताएं 2 बजे उठ करके बाबा के कमरे में बैठ जाती है, तो ये तो फिर महायोगी हो गए, क्योंकि अमृत वेले का समय बहुत ही श्रेष्ठ समय सतोगुणी समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त, फिर चौथा ब्रह्मा से संबंधित है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा का आचरण। शिव बाबा ने जैसे ही ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो सबसे पहले श्रीमत क्या दी, बच्चे अभी पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो, ये शिव बाबा ने श्रीमत जैसे दी तो ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन पवित्र योगी बनाया, उनके साथ सब बच्चों ने भी ये प्रतिज्ञा की। तो ये मुख्य रूप से 4 शब्द आते हैं जो ब्रह्मा से संबंधित है, वो ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म भोज, और चौथा ब्रह्मचर्य। और बाबा कहते हैं ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा ने जो आचरण किया उसको फॉलो करने वाले, जो आज भी बाबा ने कहा फॉलो फादर, सी फादर, तो सी फादर वाना शिव बाबा को याद करो, उनको देखो, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलो। ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन कैसे बनाया, हमको भी ऐसा ही बनना है। तो ये ब्राह्मण की निशानियाँ, फिर और भी कई निशानियाँ बताई है। ब्राह्मण किसको कहेंगे, ब्राह्मण वो जो पढ़े और पढ़ाए, ब्राह्मण का काम ही है शास्त्र पढ़ना और दूसरों को सुनाना, है ना, तो धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा करना माना धर्म की बातें सिखाना, सीखना खुद भी और सिखाना, तो पढ़ना और पढ़ाना। तो वही बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चे तुम जो पढ़ते हो वो फिर दूसरों को सुनाओ, अपने तक ही नहीं रखो। फिर और आगे ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस क्या है, यज्ञ करना, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, यज्ञ में क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो बाबा भी कहते हैं ये बड़ा यज्ञ शिव बाबा ने रचा है, उसमें तुम क्या स्वाहा करते हो, अपनी बुराइयां, बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे अंदर आधा कल्प की बुराइयां हैं, जो पुराने संस्कार हैं, वो सब स्वाहा करो इस यज्ञ में, और खुद ही केवल नहीं करो औरों को भी कराओ। तो ब्राह्मण क्या करता है, स्वाहा स्वाहा, फिर वो जो यजमान होते या जो और होते हैं भक्त, उनको भी कहेंगे आप भी करो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो हम भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। तो ये हो गए ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस। फिर वैसे समाज में 4 वर्ण गाए गए हैं, समाज में विराट रूप में तो देवता क्षत्रिय वैश्यूद्र है, लेकिन समाज में देवता कोई है नहीं, वो वर्ण दिखाया नहीं है, लेकिन समाज में 4 वर्ण बताते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन, जो धर्म की रक्षा करे, क्षत्रिय कौन, जो देश की रक्षा करे, है ना, सारे जितने भी राजा रजवाड़े जो भी होके गए सब क्षत्रिय थे। फिर वैश्य कौन, जो पेट की रक्षा करे, बिजनेसमैन रक्षा वो पेट की माना वैश्य। फिर शूद्र कौन, जो नौकरी करे। अभी गवर्नमेंट सर्वेंट कौन हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं ना, तो सब क्या हो गए, गवर्नमेंट के अधीन हो गए, गवर्नमेंट के नियमों पर चलने वाले हो गए, तो इसीलिए शूद्र हो गए। तो ये वर्ण है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा, जिसको बाबा चोटी कहते हैं। तो देवताओं को तो मुख में दिखाया है, क्षत्रियों को भुजाओं में दिखाया है, वैश्य को पेट में दिखाया है, और शूद्र को टांगों में दिखाया है। और फिर बाबा कहते कलाबाजी, शूद्र से सीधा चोटी ब्राह्मण। भक्ति मार्ग में कलाबाजी करते करते भी तीर्थों पर जाते हैं, देखा है आपने, हाँ कलाबाजी करते, मैंने तो देखा कैसे वो गोल गोल घूमते जाते हैं, सिर से पैर, फिर पैर से सिर, फिर सिर से पैर, ऐसे जाते हैं। या तो ऐसे रोल करते करते जाते हैं, कितना शरीर को कष्ट देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, ऐसे ही नहीं जाते हैं, समझते हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन बाबा ने हमको कितना सहज मार्ग बताया, आज भी बाबा की मुरली में था ये सब, कितना सहज भक्ति मार्ग में। अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, जा रहे ना अमरनाथ की यात्रा, पहुंचेंगे ना अमरनाथ, रक्षाबंधन पर ये पूरा होगा, तो कैसे ऊपर जा रहे हैं, घोड़ों पर, ये क्या नाम है, डोली पर, कोई तो हाथ में लकड़ी उठा करके चल रहे हैं, बम बम बोले, हाँ बम बम बोले, जहाँ जाना होता है उसको याद करते हैं। काशी जाते हैं तो शिव काशी गंगा, शिव काशी याद करते, तो जिस स्थान पर जाना होता है उसको याद करते हैं, तो शिव को याद करते हैं और अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तो कितना कष्ट सहन करते हैं। और बाबा कहते तुम बच्चों को अभी कोई कष्ट सहन करने की जरूरत नहीं है, भक्ति मार्ग में बहुत किया, जिन्होंने अमरनाथ की यात्रा की हाथ उठाओ, किए किसने, अच्छा गए हैं अमरनाथ पर, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, इनके लिए ताली बजाओ, अमरनाथ की यात्रा की है। पर बाबा तो हमको सच्चा अमरनाथ का ज्ञान देते ना, अमर हमारा परम धाम, अमर हमारा सतयुग, तो उसका हमें ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए बाबा हमको कष्ट नहीं देते, बाबा कहते तुमने द्वापर युग से बहुत कष्ट सहन किया, तो अभी सहज योग, सहज मार्ग, सब मन की स्थिति को चेंज करना है, जो करते हो आपका व्यापार, जो भी व्यवहार, जो भी आपका कार्य है, उसको तो करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन बाबा ने ये मध्य मार्ग सिखाया है, क्योंकि दुनिया में एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, दोनों एकदम अलग छोर, या तो एकदम भौतिकवाद, इतना भौतिकवाद जो विकारों में फंसे पड़े हैं, इतना भौतिकवाद। आज भी बाबा ने कहा किसके पास बहुत धन है तो वो तो ज्यादा विकारी होगा, कितना धन वो विकारों में ही गंवाता है। तो इसीलिए एकदम भौतिकवाद, और दूसरी ओर एकदम सन्यासी वैरागी, बिल्कुल दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम एंड्स है, एकदम भौतिकता और एकदम वैराग्य। लेकिन बाबा कहते हैं हमारी भौतिकता भी नहीं है, हम कोई उन भौतिक जो भी प्राप्तियां हैं उनमें नहीं जाते, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सोच हमारी बहुत ऊंची है, परंतु और रहना हमारा बहुत सिंपल है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना कहीं भी नहीं है। बाबा ने हमें यही सिखाया, हम कोई वो सन्यासी नहीं है, कई कहते ना आप लोग तो आपने तो सब सन्यास किया, हम कहते कहाँ सन्यासी है, फिर कहते सफेद कपड़े क्यों पहनते हो, हम कहते ये तो हमारा यूनिफॉर्म है। और बच्चे स्कूल जाते उनका सफेद ड्रेस होता है ना, मेरा भी स्कूल का यूनिफॉर्म सफेद ड्रेस थी, तो सफेद ड्रेस तो यूनिफॉर्म है, तो ये ड्रेस हमारी कौन सी है, हमारा यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है, स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म चाहिए ना, हम तो पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है, परंतु फंसना भी कहीं नहीं है। और फिर बाबा ने उस दिन भी कहा नया भी कुछ नहीं जोड़ना है, कहा नया भी नहीं जोड़ना है, जो है उसमें संतुष्ट रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें बेहद का वैराग्य भी सिखाया है। ये सब बाबा कहते खत्म होना है ना। अर्जुन को भगवान ने ये कहा कि इन सब को मारो, अर्जुन कहे मैं कैसे मारूं, मेरे मामा चाचा काका मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया इतना सिखाया, इनको मैं मारूं कैसे, वो सब कौरवों के पक्ष में थे। तो उनको कहा इनको मारो, तो अर्जुन ने कहा मैं कैसे मारूं, मोह जागृत हो गया। तो कैसे उसने मारा, उसके लिए कितना ज्ञान देना पड़ा, सारा गीता का ज्ञान यही है ना, मोह को कैसे जीतो। तो कैसे ज्ञान दिया, सबसे पहले उनको क्या ज्ञान दिया कि ये सब मरे पड़े हैं। उनको साक्षात्कार कराया, देखो ये जिनको तो मेरा मेरा कहते हो ना, इन सब की मौत निश्चित है। एकदम शमशान दिखा दिया उसको साक्षात्कार करा करके। अब वो जैसे देखा कि ये सब मरे पड़े हैं तो उनको और दुख हो गया कि मैं निमित्त बनूंगा इनको मारने के लिए, मैं ऐसा पाप क्यों करूं, मैं मारूं क्यों, अपने आप ये मरे तो और बात है लेकिन मैं क्यों मारूं। तो वो तीर चलाने लिए तैयार नहीं हुआ। तो इतना ज्ञान दिया उसको आत्मा का, लेकिन उसने समझा नहीं, है ना। दूसरा अध्याय पूरा क्या है, आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा तो मरती नहीं, वो तो जलती नहीं, ये तो केवल चोला छोड़ती है चोला लेती है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। लेकिन उसने कहा मैं क्यों मारूं, तो वो जागृत हो गया, मेरा मेरा मेरे मामा चाचा काका। फिर जब अर्जुन ने नहीं समझा तो फिर दूसरा उपाय भगवान ने ढूंढा। हाँ, गीता के आगे क्या उपाय क्या उपाय बताया, हे अर्जुन तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय दिखाते ना, ये कौरव पांडव क्षत्रिय राजा कुल के थे, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये फर्ज है युद्ध करना, तुम योद्धा हो, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कायर कहलाओगे। तो उसको स्वमान दिया कि पहचानो अपने आप को मैं कौन हूं। तो बाबा हमको कितना स्वमान देते हैं, ये भी बताते हैं बच्चे ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत निश्चित है, विनाश होगा, ये सब खत्म होना है। बेहद का वैराग्य भी दिलाते हैं और फिर कहते हैं अपने आप को पहचानो मैं कौन हूं। तो स्वमान भी बाबा याद दिलाते, पर फिर भी अर्जुन ने समझा नहीं। फिर तीसरा उपाय क्या बताया भगवान ने, गीता में ये सब है। फिर अर्जुन को क्या समझाया कि यही अर्जुन अगर तुम इस युद्ध में विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। तो उसने कहा ऐसा स्वर्ग किस काम का जिससे हम इतनों को मारे और स्वर्ग जमे स्वर्ग का मालिक बने, ऐसी हम करें ही क्यों, हमको स्वर्ग व्रत नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए क्योंकि मारना नहीं है। तो भगवान ने कहा अगर तुम हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग में जाओगे ये लक्ष्य बुद्धि में रख करके तुम युद्ध करो। अब है तो माया के साथ युद्ध, कोई किसी मामा चाचा काका के साथ तो युद्ध है नहीं, लेकिन स्वर्ग को भी उसने ठुकरा दिया। किस कारण से, मोह के वश। फिर चौथा उनको क्या लक्ष्य दिया कि हे अर्जुन, हाँ ये चौथा लक्ष्य ये दिया कि तुमको कौन सुना रहा है, कौन ये बता रहा है। तो फिर विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराया, और विराट स्वरूप का साक्षात्कार करा करके उनकी आंखें खुलवा दी कि तुमको ये भगवान कह रहा है। वो तो कृष्ण अब उसका सखा समझ रहे थे बचपन, कृष्ण तो साधा साकार रूप में समझ रहा था, लेकिन जब उनको ये बताया कि ये कोई आपका सखा नहीं कह रहा है, ये स्वयं भगवान कह रहा है, वो क्या मिक्स कर दिया है सब। तो जब उसको ये समझ मिली कि हमको कहने वाला कौन है, तब उसकी आंखें खुली और तब वो तैयार हुआ। तो हमें कौन समझा रहा है बाबा किस, इसलिए बार बार मुरलियों में क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा ने समझा रहा है। ये मत समझो कि ये ब्रह्मा कह रहा है, कौन कह रहा है, शिव बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है। तो भगवान कह रहा है तो उनका तो मानो, शिव बाबा कह रहा है, ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, ब्रह्मा भी तुम्हारी तरफ पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट नंबर वन स्टूडेंट था, कैसे कि ब्रह्मा बाबा ने कभी एक मुरली भी मिस नहीं की होगी, मिस की होगी ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से ही तो ज्ञान निकला, शिव बाबा ने दिया। तो सबसे पहले कान किसने किसके सुने, किसने सुने, किसके कान ने पहले पहले सुना, ब्रह्मा का ही, उनके कान तो सबसे नजदीक थे ना उनके मुख के, तो इसीलिए नंबर वन स्टूडेंट। मैं भी पुरुषार्थी हूँ, लेकिन अभी तो नहीं कहेंगे ना पुरुषार्थी, अभी तो संपूर्ण बन गई ये साकार मुरलियाँ बाबा के पुरुषार्थी जीवन में शिव बाबा ने सुनाई है। तो इसलिए बाबा यही कहते थे, बच्चे तूफान तो सबसे पहले इंजन को आते हैं, डब्बों को तो बाद में लगते हैं, पहले पहले तूफान किसको लगेगा, इंजन को। तो ये कौन है, ये इंजन है, फिर डबल इंजन। बाबा कहते तुम चढ़ाई चढ़ रहे हो, वो दार्जिलिंग जाते ना तो वो ऊंची पहाड़ों पर जाती है ट्रेन, तो डबल इंजन लगती है आगे भी और पीछे भी। तो हमारे लिए भी दो इंजन है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा या ब्रह्मा बाबा मामा, हमारे लिए दो इंजन है, क्योंकि ये भी हमारे सामने लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने जो किया वो हमको उनको फॉलो करना है। फिर बाबा ने फिर और आगे क्या कहा, अभी बाबा की बातें सुनेंगे। क्योंकि जब अर्जुन ने ये समझ लिया कि ये भगवान कह रहे हैं, तब उसने युद्ध करना शुरू किया। तो ये भगवान हमको कह रहे हैं कि इन विकारों को जीतो, ये तुम्हारे दुश्मन है, इनको जीतेंगे तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो इसलिए कोई मनुष्य को मारने की बात नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, वो तो हथियार दिखा दिए, देवियों को भी हथियार दिखा दिए, अस्त्र शस्त्र क्या क्या देवियों को दे दिए, खड़ग, खड़ग बाबा ने उस दिन खड़ग को बहुत याद किया। किसी ने मेरे से पूछा बहन जी खड़ग क्या होता है, तो हमने कहा वो खड़ग जो बना है वो भी एक प्रकार की तलवार है। वो हम खड़गपुर गए थे, खड़गपुर देखा है कभी, किसने देखा है खड़गपुर, पता नहीं कहाँ है, यूपी में है, पता नहीं कहाँ है जी, बिहार में, कहाँ पर है जी, कहाँ है। तो वह आपके लिए वो बताते हैं, खड़गपुर के खड़गपुर के खड़कने से खड़क क्या है ऐसे कुछ बताते हैं, हाँ जी, हाँ कुछ ऐसे खड़क खड़गपुर खड़क के खड़कने से खड़कता है खड़गपुर, खिड़कियों के खड़क खड़गपुर, तो ऐसे खिड़कियां खड़गपुर खड़क, तो एक प्रकार का वो तलवार है। और वह खड़गपुर में गई थी तो वहाँ उसका वो देवी के आगे दिखा, इतना बड़ा शोकेस में वो खड़ग दिखाया, तो इसलिए नाम पड़ा है खड़ग। तो ये देवियों को दिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास ऐसे तो कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, ये तो सब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। पहले भी जो योद्धे युद्ध करने जाते थे तो तीन उनके पास शस्त्र होते थे, एक होती थी तलवार, दूसरा होता था, दूसरी होती थी ढाल, और तीसरा होता था कवच, कवच जो पहनते थे। तो बाबा ने भी हमें ये अस्त्र शस्त्र दिए। तलवार कौन सी हमारी? ज्ञान की तलवार। फिर ढाल कौन सी है? ड्रामा की ढाल। तो ढाल कब यूज होती है? जब कोई दुश्मन एकदम नजदीक आ जाए तो वो समय तलवार काम नहीं करती, अपना बचाव चाहिए तो ढाल दिखाते। तो ढाल बचाव के लिए, कवच भी बचाव के लिए और तलवार अटैक आक्रमण करने के लिए है। तो ज्ञान की तलवार से विकारों को जीतना है। परंतु बहुत नजदीक आ गए ये विकार, तो चलो किसी के वश हो गए, तो फिर बाबा कहेंगे ड्रामा, चलो गुस्सा आ गया, कोई ऐसे लोभ वश हो गए, अभिमान आ गया, तो चलो जो हो गया हो गया, अनुभव कर लिया, अब आगे नहीं करना है। तो ड्रामा की ढाल। और फिर योग का कवच। तो योग का कवच जो पहन करके हम माया के वार से बच जाते हैं। और कैसे बचते हैं? बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करो, शरीर में आओ, शरीर से न्यारे हो जाओ, शरीर में आओ, शरीर से न्यारे हो जाओ। योगी जीवन, जिसको बाबा सहज योगी कहते हैं, राज योगी कहते हैं, कर्म योगी कहते हैं, कर्म करो फिर न्यारे हो जाओ। पांच स्वरूपों की स्मृति बाबा दिलाते हैं, पांच सेकंड, पांच सेकंड कहो, पांच मिनट कहो, सारे दिन में कितनी बार आप कर सकते हो, क्योंकि यही अंत में काम आएगा, अंत में यही काम आना है। तो पहला लेसन आत्मा का और अंतिम लेसन आत्मा का, वही काम आना है। जो बाबा कहते हैं बच्चे अंत में तुम्हें और कोई याद न आए सिवाय बाबा के, एक बाबा दूसरा न कोई, अंत में और कोई याद आया तो फेल। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जो अंत में और कोई याद ना आए। जैसे कोई विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सब याद है, पर अंत में कोई पढ़ेगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्यों बहुत काल का अभ्यास चाहिए? क्योंकि अचानक होना है सब। तो अचानक का पाठ भी बाबा पढ़ाते हैं, और फिर बाबा उसके लिए क्या कहते हैं, एवर रेडी बनना है, क्योंकि अचानक होना है तो हर वक्त तैयार होना है। सरप्राइज टेस्ट होते हैं ना, एग्जाम होते हैं स्कूलों में, सरप्राइज पहले नहीं बताया जाता है, तो हर वक्त स्टूडेंट को तैयार रहना पड़ता है, कभी भी एग्जाम लिया जाए सरप्राइज टेस्ट। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सब अचानक होना है तो हमको सदा एवर रेडी रहना है। किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें? तो मम्मा ने एक टूक जवाब दिया, हमेशा ये समझो मैं आज मेरा अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। अब अंतिम दिन है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? इतना पुरुषार्थ करेंगे ना, जो है हिसाब किताब वो सब पूरा करना है, ये करना है, कितना काम होता, अंतिम दिन है, कल हमको जाना है, तो सब कुछ भी रहा हुआ नहीं होना चाहिए, एवर रेडी बनना है। तो अचानक होना है तो उसके लिए हर वक्त एवर रेडी होना पड़ेगा, पर एवर रेडी होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अचानक होना है। तो इसीलिए बाबा ने हमें छोड़ने के लिए भी नहीं कहा है, फंसने के लिए भी नहीं कहा है, नया जोड़ने के लिए भी नहीं कहा है, परंतु क्या करो, चौथा शब्द कौन सा है? न छोड़ो, न फंसो, न जोड़ो, तो चौथा शब्द कौन सा है? निभाओ। क्या करो? निभाओ, क्योंकि आपका अनेक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो अनेक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में चुकतू करना है। आज ही बाबा की मुरली थी कि हाँ ये कर्म भोग शब्द नहीं कहो, कर्म भोग शब्द, भोग कहने से थोड़ा दुख होता है, यार मेरा कर्म भोग है, कोई ऐसी बीमारी आ गई तो कहेंगे मेरा कर्म भोग है। ये कर्म भोग नहीं है, ये जो भी हिसाब किताब है ये चुप तो हो रहा है ताकि धर्मराजपुरी की सजाएं न खानी पड़े। इसीलिए बाबा कहते हैं नया कुछ भी नहीं जोड़ना है, पर जो है उसको समाप्त करना है। तो कैसे समाप्त करेंगे? हाँ, बाबा की याद से। वो याद ही एकमात्र दवाई है, बस और कोई नहीं। इसलिए बाबा ने हमें कहा जब ये स्थिति होती जाएगी, न्यारे प्यारे होते जाएंगे, तब संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना, ये भी लक्ष्य है। घर जाने से पहले यहाँ ही संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न माना, संपन्न किसको कहेंगे? सर्व गुणों में संपन्न। और संपूर्ण किसमें कहेंगे? सर्व कलाओं में संपूर्ण। जो देवताओं की महिमा है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला माना पूर्ण चंद्रमा, फुल गोल आकार, ये है संपूर्ण। और संपन्न माना पूरी लाइट, तो पूरी लाइट माना संपन्न, सब गुणों में संपन्न। और 16 कला संपूर्ण माना आत्मा ऐसी संपूर्ण हो जाए जो एकदम साक्षात्कार मूर्त हो जाए। इसलिए बाकी जितने भी दिन है चंद्रमा के, वो कोई ना कोई कम पेशी होती है, कमी पेशी होगी, लेकिन पूर्णमासी की रात एकदम फुल मून, तो वो संपूर्ण है, संपूर्ण गोलाकार और संपन्न लाइट के साथ पूर्णमासी। तो बाबा कहते तुम्हें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, और उसके लिए फिर डबल लाइट बनना है। तो डबल लाइट माना जितना भी बोझ है, फिर बाबा हल्का कर देते, बच्चे सब मुझे दे दो, क्यों बोझ उठा कर ले चलते हो, सब मुझे दे दो। तो हम बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, हम ट्रेन में सफर करके जब स्टेशन पर उतरते हैं तो सामान बहुत होता है ना। तो पहले जमाने में, हाँ अभी भी कूली तो करते होंगे, तो कूली करते हैं, कूली कहता है चलाओ लाओ, फिर एक पेटी रखेगा, दूसरी पेटी रखेगा, फिर यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, पीछे रखेगा, फिर कहता और भी कुछ देना हो तो लो लाओ लाओ। हम सोचते हैं कितना उठाएगा, लेकिन कूली उठा लेता है और उठा करके दौड़ता है, और हम एक छोटा सा थैला लेते और हाँफते और वो तो आगे आगे भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, ये बोझ मुझे दे दो। बच्चे क्या कहते हैं, बाबा सारी दुनिया का बोझ को उठाना है, मेरा बोझ क्या करे, बाबा कैसे उठाएगा? अरे सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला आपका नहीं उठाएगा क्या? उठाएगा कि नहीं? पर हम क्यों नहीं देते? मेरा है, मेरा है समझ करके नहीं देते, थोड़ा मोह है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मोह को मेरा, बाबा में मोह रखो। इसीलिए मेरा मेरा कहते हो तो मेरा बाबा, मैं कहते हो तो मैं आत्मा, बस इसलिए बाबा हमें इससे कहते डबल लाइट हो जाओगे। तो डबल लाइट होकर के उड़ना है, अभी चढ़ती कला चलती कला ये सब नहीं, उड़ती कला। तो उड़ती की ओर उड़ने के लिए तो हल्का होना पड़ेगा, हल्का होने के लिए सारा जो भी किचरा है सब बाबा को दे दो। इसलिए बाबा कहते फुल स्टॉप, बिंदु बिंदु लगा दिया, सब पूरा हो गया, वाक्य पूरा हो गया। तो बिंदु बनना है, बिंदु को याद करना है, बिंदु लगाना है, ये तीन बिंदु सदा याद रहे तो हम डबल लाइट बन जाएंगे और फिर बाबा के साथ घर उड़ेंगे। लेकिन घर जाने से पहले फरिश्ता बनना है, ये सब माइलस्टोन्स है, ये सब पार करना है, फरिश्ता बनना है। फरिश्ता किसको कहेंगे? जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। तो न्यारा भी और प्यारा भी, डबल लाइट, सब एकदम पुराना हिसाब किताब चुपतू, बस घर जाना है, फिर घर जा कर के फिर नई दुनिया में आना है। तो मनुष्य से देवता बनने तक क्या करना है, हाँ, कितने माइलस्टोन्स पार करने हैं, ये लक्ष्य है, अलग अलग लक्ष्य, और वो लक्ष्य तक पहुंचकर फिर हमारा उद्देश्य आता है। कौन सा उद्देश्य हमारा, मनुष्य से देवता बनना। तो बस मुझे देवता बनना है, पर उसके पहले मुझे बाप समान बनना है, उसके पहले मुझे डबल लाइट बनना है, उसके पहले मुझे ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय नहीं बनना है, योद्धा नहीं बनना है, योगी बनना है। तो जो योगी होंगे वो ही फिर सहयोगी भी जरूर साथ में होंगे, अपना भाग्य बनाने वाले होंगे। तो तन मन धन, हाँ, ये बाबा का समझकर ट्रस्टी होकर चलेंगे। तो कितने बाबा ने लक्ष्य दिए, हर मुरली में बाबा कुछ न कुछ नई बात जरूर सुनाते हैं। एक तो स्वमान चढ़ाते हैं, स्वमान दिलाते हैं, नशा चढ़ाते हैं, तुम कौन हो, फिर साथ में हमें ऊंचा लक्ष्य भी देते हैं, घर चलना है। चलो अभी आपके सामने हमारा मधुरवाणी ग्रुप आया है, सतीश भाई।
ओम शांति। हमारे बीच आप सभी का स्वागत करने के लिए मधुरवाणी ग्रुप उपस्थित हुआ है, तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय सतीश भाई जी, आदरणीय हल्दर भाई जी और आदरणीय निरंजन भाई जी, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय ब्रह्मा कुमार जी जो मंडी से आए हैं, टीचर्स पहने, मधुरवाणी ग्रुप के प्रणेता आदरणीय ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, आप इस ग्रुप के डायरेक्टर हैं, आर्ट एंड कल्चरल विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। 1970 में 8 वर्ष की आयु में आपको बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। आप उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हैं और 19 वर्ष की आयु में 1981 में आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाबा की जो विशेष गिफ्ट आपको है कि गीतों के द्वारा सभी के अंदर आप उमंग उत्साह भर देते हैं, जैसा प्रसंग होता है वैसा ही आपका गीत होता है। 6000 से अधिक गीतों की रचना आपने रची है, आपने और बड़े बड़े सिंगर्स ने इन्हें आवाज दिया है। विगत 35 वर्षों से रसोई एवं भोजनालय प्रबंधन की अद्भुत सेवाएं दे रहे हैं और 15 वर्षों से विदेशी भाई बहनों को हिंदी भाषा प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, और आपका साथ देंगे बीके हल्दर भाई जी। आपने अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय से गायन और इंस्ट्रूमेंट में विशारद किया है। साथ में निरंजन भाई जी ग्लोबल हॉस्पिटल के किचन में 25 वर्षों से अधिक समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निवेदन करती हूँ मधुरवाणी ग्रुप से आप सभी का स्वागत करने के लिए।
हमारे साथ निरंजन भाई।
ओम शांति। अच्छा, ग्रोथ बहुत बड़ा है, जोरदार तालियां बजाएं।
बहुत सुंदर सा अवसर है, चारों तरफ भट्टियों की लहर है और मधुबन में भट्टी करने का अवसर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक बार अपने सौभाग्य के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और शीला बहन को भी सामने देख करके हमने गीत में जिक्र किया है कि शीला बहन और शीलू बहन जी का दोनों का साथ साथ मिलन हो रहा, तो जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन कर लें। मंडी भी आया है, वासत भी आया है और हमारे बीच में हमारे बहुत बड़े बड़े सिंगर, हमारी दामिनी बहन बैठी है। आप सब, बहुत कम तैयारी होती है, आप सब उसके लिए क्षमा करेंगे अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक बार अपने लिए फिर से जोरदार ताली बजा के स्वागत करें।
तैयारी कुछ भी हो गाने का, लेकिन भाई साहब की लेखनी की जो तैयारी है वो अवर्णनीय है। जो शब्द को इस प्रकार से तालमेल दे करके लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं, तो इसलिए सबकी महिमा के योग्य हैं। और आप भी, बाबा को ये वरदान है कि आशु कवि हैं, इसलिए भाई साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
दूर हिमाचल मंडी से, दूर हिमाचल मंडी से मधुबन भट्टी को आए हैं। विभा बहन संग वारद वाले भी तशरीफ लाए हैं। शीला बहन शीलू बहन का, शीला बहन शीलू बहन का मिलन देख मुस्कुराए हैं। मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं। दूर हिमाचल मंडी से मधुबन में आने का मौका बड़े भाग्य से है मिलता। महारथियों की पालना से जीवन कमल यहाँ खिलता। मधुबन में आने का मौका बड़े भाग्य से है मिलता। महारथियों की पालना से जीवन कमल यहाँ खिलता। आज भी आंगन में बाबा, आज आंगन में बाबा स्वागत में बाएं बढ़ाए हैं। मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं। दूर हिमाचल मंडी से मोहिनी मास है प्यार में मन मधुबन महका। चारों धाम कर चित का चातक चैनो अमन से है चहका। दीदी मन मोहिनी मास है प्यार में मन मधुबन महका। चारों धाम कर चित का चातक चैनो अमन से है चहका। भाग में दिखते आप फरिश्ते, भाग में दिखते आप फरिश्ते मधुबन वतन बनाए हैं। मधुबन वाले मधुर वाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं। दूर हिमाचल मंडी से होकर सकाश से इतनी शक्ति भरनी है। डबल लाइट बन 14 वर्ष की फिर वही भट्टी करनी है। अंतर्मुख होकर सकाश से इतनी शक्ति भरनी है। डबल लाइट बन 14 वर्ष की फिर वही भट्टी करनी है। बाबा मम्मा दीदी दादिया, बाबा मम्मा दीदी दादिया स्नेह पुष्प बरसाए हैं, मधुबन वाले मधुरवाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं। दूर हिमाचल मंडी से, दूर हिमाचल मंडी से मधुबन भट्टी को आए हैं, दीपा बहन संग वालद वाले भी तशरीफ लाए हैं, शीला बहन शीलू बहन का मिलन देख मुस्काए हैं, मधुबन वाले मधुरवाणी में स्वागत कर हर्षाए हैं। दूर हिमाचल मंडी से,